पाठ सात ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता। सैंधव संस्कृति के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारत का इतिहास एक प्रकार से आर्य जाति का इतिहास है। आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ऐसा माना गया है कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने सैंधव नगरों को ध्वस्त किया था वे आर्य ही थे। स्वयं ऋग्वेद में इस संघर्ष का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र को दास दस्युओं का विनाश करने वाला या दस्युहन कहा गया है। इस ग्रंथ में दास दस्युओं के पुरो का भी वर्णन मिलता है, जिनको विनष्ट करने के कारण इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ये पुर चौड़े पूर्वी पाषाण निर्मित या अश्वमयी या धातु निर्मित या आयसी कच्ची ईंटों के बने हुए या आमा और सौ दीवारें वाले शतभुजी आदि कहे गए हैं। ये पुर सैंधव नगरों से भिन्न नहीं थे। दास दस्युओं की जो विशेषताएं ऋग्वेद में वर्णित हैं वे सब सैंधव निवासियों में देखी जा सकती हैं। सैंधव हड़प्पा में दास दस्यु अधिक संख्या में थे। ऋग्वेद में दास दस्युओं को अकर्मण या वैदिक क्रियाओं को न करने वाले और अदेवयु यथा वैदिक देवताओं को न मानने वाले और यज्वन या यज्ञ न करने वाले अन्य व्रत या वैदिकेतर व्रतों का अनुसरण करने वाले या मृद्वाक या अपरिचित भाषा बोलने वाले अब्रह्मान या श्रद्धा और धार्मिक विश्वास से रहित एवं अव्रत व्रतों से रहित कहा गया है। दास दस्युओं को लिंग पूजक या कृष्ण देवा कहा गया है। दास दस्युओं की संस्कृति के इन वैदिक उल्लेखों में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो सैंधव सभ्यता के लोगों पर लागू न होती हो। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि सैंधव निवासियों के धार्मिक आचार में लिंग पूजा को विशेष स्थान प्राप्त था और उनकी भाषा जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है वैदिक संस्कृति से भिन्न थी। इस आधार पर कुछ विद्वान यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सैंधव नगरों का विनाश अंततो गत्वा आर्यों के आक्रमण से ही संभव हुआ था, किंतु अब आर्य आक्रमण का सिद्धांत खोखला सिद्ध हो चुका है। कृष्ण देवा का अर्थ भाष्यकार शायण भिन्न प्रकार से करते हुए कामाशक्त अथवा विलासी कृष्णन दिव्यंत क्रीडंतिवाह के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। केसी चट्टोपाध्याय का विचार है कि ऋग्वेद में वर्णित दास दस्यु संघर्ष पौराणिक देवासुर संग्राम का ही रूपांतर है, न कि मानव जातियों के संघर्ष का। इस प्रकार वैदिक सैंधव सभ्यता में विभेद सूचक बातें अधिकांशतः कल्पना पर ही आधारित हैं, वास्तविकता पर नहीं। मूल निवास स्थान। परंतु सैंधव सभ्यता के विनाशक आर्य किस प्रदेश के निवासी थे यह एक अत्यंत विवादग्रस्त प्रश्न है। यहाँ कुछ प्रमुख मतों का संक्षेप में वर्णन किया जाएगा। सुने भारत। अनेक विद्वानों की धारणा है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे तथा यहीं से वे विश्व के विभिन्न भागों में गए। पंडित गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश डी एस त्रिवेद मुल्तान स्थित देविका एल डी कल कश्मीर का हिमालय क्षेत्र में आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं, किंतु हमें अब यह तो मान ही लेना चाहिए कि भारत आर्यों का मूल निवास स्थान नहीं था और वे यहाँ आक्रांता के रूप में ही आए। सैंधव सभ्यता आर्य सभ्यता से भिन्न एवं इससे अधिक प्राचीन थी। यदि आर्य भारत के निवासी होते तो वे सर्वप्रथम अपने देश का ही आर्यीकरण करते। समस्त दक्षिणी भारत आज तक आर्य भाषा नहीं है। उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान से ब्राह्मी भाषा का पता चलता है जो द्रविड़ परिवार की भाषा थी। यह इस बात का सूचक है कि संपूर्ण भारत अथवा कम से कम उसका एक बड़ा भाग भाषा की दृष्टि से अनार्य था। यह आर्यों के भारतीय मूल के सिद्धांत के विरुद्ध सबसे प्रबल प्रमाण है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान विश्व के भिन्न भिन्न देशों में निर्धारित करने का प्रयास किया है। उत्तरी ध्रुव। आर्यों का आदि स्थान उत्तरी ध्रुव में मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान पंडित बाल गंगाधर तिलक हैं। तिलक महोदय का विचार है कि आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में किया था। इसमें एक सूक्त के अंतर्गत दीर्घकालिक उषा की स्तुति मिलती है। दीर्घकालिक उषा उत्तरी ध्रुव में ही दिखाई देती है। महाभारत के सुमेर पर्वत का वर्णन मिलता है, जहाँ 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रात होती है। यहाँ भी उत्तरी ध्रुव की ओर ही संकेत है। अतः हम यह कह सकते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव के ही निवासी थे और इसी कारण उनके मस्तिष्क में अपनी मूल भूमि की स्मृति बनी हुई थी। किंतु तिलक का उपयुक्त मत पूरे साहित्य पर आधारित होने के कारण मान्य नहीं है। स्वयं आर्यों ने ही सप्त सैंधव प्रदेश को देवताओं द्वारा निर्मित देवकृत योनि कहा है। यदि उत्तरी ध्रुव उनका आद्य देश होता तो कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से वे उसका उल्लेख करते। एशिया, अनेक विद्वानों ने एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में आर्यों का मूल स्थान स्वीकार किया है। मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोट्स बैक्ट्रिया तथा एडवर्ड मेयर पामीर के पठार को मानते हैं। मेयर महोदय का विचार है कि पामीर के पठारों से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। इस मत का समर्थन ओल्डेनबर्ग तथा किथ आदि विद्वानों ने भी किया है। बैंडस्टीन महोदय ने बताया है कि भारतीय भाषा कोश से प्रकट होता है कि आर्य मूलतः एक पर्वत के नीचे घास के मैदान में निवास करते थे। यह मैदान यूराल पर्वत के दक्षिण में स्थित किर्जिंग का मैदान था। जो विद्वान एशिया को आर्यों का मूल स्थान स्वीकार नहीं करते, उनका कहना है कि भारोपीय भाषा भाषी परिवार के मुहावरों का प्रसार यह सिद्ध करता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया की अपेक्षा यूरोप में खोजना अधिक तर्कसंगत होगा। यूरोप, यूरोप महाद्वीप के विभिन्न स्थानों जर्मनी, हंगरी तथा दक्षिणी रूस के विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान निर्धारित करने के पक्ष में अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिसका मत है कि जर्मनी, जो जर्मनी को मानते हैं, जर्मनी को आर्यों का आदि देश मानने वाले विद्वानों में पेनका, हर्ट आदि प्रमुख हैं। उनके तर्क इस प्रकार हैं। जो पहला मत है उनका, मध्य जर्मनी में स्थित स्कैंडोनेविया नामक स्थान कभी भी विदेशी आधिपत्य में नहीं रहा, तो भी यहाँ के निवासी भारोपीय भाषा बोलते थे। इससे सिद्ध होता है कि भारोपीय भाषा का मूल स्थान यही था। दूसरा जो मत है, पश्चिम बाल्टिक सागर के तट से सर्व प्राचीन एवं अति साधारण वस्तुएं पाई गई हैं। यहाँ से प्राप्त पाषाणोपकरण अत्यंत कलापूर्ण एवं तकनीकी दृष्टि से उत्तम कोटि के हैं। ये सब भारोपियों की कृतियाँ हैं। मध्य जर्मनी से भी प्राग ऐतिहासिक काल के कुछ मृदभांड पाए गए हैं। इन्हें भी प्राचीन आर्यों से ही संबंधित किया गया है। जो तीसरा मत है, आर्यों की शारीरिक विशेषताएं भी उन्हें जर्मनी का आदिवासी बताती हैं। जैसे उनकी एक प्रमुख विशेषता भूरे बालों का होना है। आज भी जर्मनी के लोग भूरे बालों वाले पाए जाते हैं। परंतु यदि उपयुक्त तर्कों की आलोचनात्मक समीक्षा की जाए तो बड़ी आसानी से उनका खंडन हो जाएगा। एकमात्र भाषाई आधार पर स्कैंडिनेविया के आर्यों का मूल स्थान नहीं माना जा सकता। किसी स्थान की भाषा का परिवर्तित न होना उसके बोलने वालों की प्रगतिहीनता तथा संकीर्णता को भी सूचित करता है, न कि उसकी प्राचीनता को। बाल्टिक सागर तथा मध्य जर्मनी से मिलते जुलते उपकरण तथा मृदभांड कुछ अन्य स्थानों जैसे दक्षिणी रूस, पोलैंड, त्रिपोलजे आदि से भी मिलते हैं। कुछ उपकरण जर्मनी के उपकरणों से भी अधिक प्राचीन है। जहाँ तक भूरे बालों का प्रश्न है, यह एकमात्र जर्मनी के निवासियों की ही विशेषता नहीं है। पतंजलि ने भारतीय ब्राह्मणों को भी भूरे बालों वाला बताया है। तो क्या हम केवल इसी आधार पर भारत को आर्यों का आदि देश स्वीकार कर सकते हैं? हंगरी, आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी के मानने वाले विद्वानों में गाइल्स सर्वप्रमुख विद्वान हैं। विभिन्न यूरोपीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उन्होंने यह बताया है कि आर्य मूलतः एक ऐसे स्थान में रहते थे जहाँ पर्वत, नदियाँ, झील आदि थे तथा गेहूँ, जौ की प्रमुख रूप से खेती की जाती थी और गाय, बैल, भेड़, घोड़ा, कुत्ता आदि पशु पाले जाते थे। ये सभी विशेषताएं हंगरी प्रदेश अथवा डेन्यूब नदी घाटी में प्राप्त होती है, अतः यही आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा। किंतु यह भी मत असंगत है, इस प्रकार की विशेषताएं कुछ अन्य स्थानों में भी पाई जाती है। मात्र भाषा विज्ञान के आधार पर इस समस्या का हल निकालना उचित नहीं लगता। दक्षिणी रूस। कतिपय पुरातत्वीय एवं भाषा शास्त्रीय सामग्रियों के आधार पर मेयर पीक तथा गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार किया है। दक्षिणी रूस में किए गए उत्खनन से लगभग उसी प्रकार की संस्कृति के अवशेष मिले हैं जो आर्यों के समय में थे। यहाँ की खुदाई से अश्व का अवशेष भी मिला है जो आर्यों का प्रिय पशु था। विगत महोदय के अनुसार आर्य दक्षिणी रूस के एक विस्तृत प्रदेश पर निवास करते थे। दक्षिणी रूस के त्रिपोलजे से लगभग 30,000 ईसा पूर्व के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर हेनरिंग ने दक्षिणी रूस को आर्यों का आदि देश बताया है। भारोपीय तथा मध्य रूस की फिनो उग्रियन भाषाओं में आश्चर्यजनक क्षमता दिखाई देती है, जो इस बात की सूचक है कि भारोपीय तथा मध्य रूस की जाति में प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक संपर्क था। अतः उक्त विद्वानों के अनुसार दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि आर्यों को विदेशी मूल का मानने का मत प्रधानतया भाषा विज्ञान पर आधारित होने के कारण बहुत अधिक सबल नहीं है। वेद में कोई उद्धरण ऐसा नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि आर्य यहाँ अक्रांता के रूप में आए थे। आर्य शब्द को जातिवादी मानना ठीक नहीं है। ऋग्वेद के मंत्रों में प्रयुक्त शब्दों की संख्या 153,972 है, जिसमें आर्य शब्द मात्र 33 बार ही आता है। भाषाविदों ने तुलनात्मक भाषा विज्ञान को एक प्रामाणिक शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है, किंतु भाषा एक सांस्कृतिक इकाई है जिसका किसी जाति विशेष से संबंध स्थापित करना उचित नहीं है। एक ही प्रजाति के लोग विभिन्न भाषा भाषी हो सकते हैं। ऋग्वेद ने आर्य तथा दास दस्यु के बीच जो विभेद किया गया है वह प्रजाति न होकर धार्मिक लगता है। आर्य तथा दास दस्यु किसी जन समुदाय प्रजाति अथवा जनजाति के नाम नहीं लगते। इनका विरोध धार्मिक व अधार्मिक का विरोध है। दास दस्यु का प्रयोग परिचारक के रूप में भी मिलता है। दस्यु शब्द ईरानी भाषा में भी मिलता है जो ग्रामीण जन का सूचक है। जहाँ तक ब्राह्मी भाषा का प्रश्न है, इसका दक्षिण की द्रविड़ भाषा से दूर का संबंध ही हो सकता है। उत्तर पश्चिम में इसके व्यापक प्रचलन का प्रमाण नहीं मिलता। कुछ विद्वानों का कहना है कि बलूचिस्तान में ब्राह्मी भाषा भाषी लोग बाहर से आए थे, जबकि कुछ विद्वान इस भाषा को बोलचाल की आधुनिक पूर्वी एलमी बताते हैं। यह भी दृष्टव्य है कि गोदावरी के दक्षिण में सैंदव सभ्यता का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। जहाँ तक इंद्र को पुरंदर अर्थात पुरो को ध्वस्त करने वाला कहे जाने का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कोटदीजी तथा कालीबंगन के प्राक सैंधव स्थलों से भी दुर्गीकरण के साक्ष्य मिल चुके हैं। स्वयं सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूर्ववर्ती संस्कृति के दुर्गों का भेदन किया जाना भी संभव है। ऐसी स्थिति में अब केवल आर्यों के ही देवता को पुरंदर नहीं कहा जा सकता। पुनः इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि इंद्र शत्रु नगरों का विजेता था। पुरातत्व से भी आर्यों के अक्रांता होने की बात पुष्ट नहीं होती। अब प्रायः सभी विद्वान इसे स्वीकार करने लगे हैं कि इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि आर्य विदेशी अक्रांता थे। जो विद्वान आर्यों को विदेशी मूल का मानते हैं उनका आधार मैक्स मुलर द्वारा निर्धारित ऋग्वेद की तिथि है। सूत्र साहित्य को ईसा पूर्व 600 से 200 में रखते हुए वे इसके पूर्ववर्ती साहित्य जिसका विभाजन वे ब्राह्मण काल मंत्रकाल तथा छंद काल में करते हैं के लिए 200 वर्षों की अवधि निर्धारित करते हुए प्रस्तावित करते हैं कि वैदिक मंत्रों की रचना लगभग 1200 ईसा पूर्व में हुई। यह निष्कर्ष उस समय तक ठीक था जब तक पश्चिम के लोगों को वैदिक साहित्य के विषय में बहुत कम ज्ञान था, परंतु अब यह मत अमान्य हो गया है। स्वयं मैक्स मुलर ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में इसे त्याग दिया था। पुनः मैक्स मुलर द्वारा निर्धारित इस क्रम की विधि संदिग्ध है और इसे सत्य नहीं माना जा सकता। वैदिक कालीन संस्कृति। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल या अर्ली वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक काल अथवा लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ प्रत्येक काल का कुछ विस्तार से बताया जाएगा। जो ऋग्वैदिक काल है, इस काल का इतिहास हमें पूर्णतया ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल है, इसमें 2 से 7 तक प्राचीन माने जाते हैं। इसमें 3 पाठ मिलते हैं, साकल इसमें 1017 मंत्र हैं, बालखिल्य इसमें 11 मंत्र हैं तथा वास्कल इसमें कुल 56 मंत्र हैं। ऋग्वेद की तिथि के विषय में भी पर्याप्त मतभेद हैं। मैक्स मुलर ईसा पूर्व 1200 से 1000 इसकी तिथि मानते हैं। जैकोबी ने रचना काल 33 शताब्दी ईसा पूर्व बताया है। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद के प्राचीनतम अंश को 6000 ईसा पूर्व के आसपास लिखा हुआ बताया है। विंटरनेट ने वैदिक साहित्य का आरंभ काल ईसा पूर्व 2500 से 2000 तक निर्धारित किया है। समस्त मतों पर विचार करने के उपरांत हम सामान्यतः ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच रचित मान सकते हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था। ऋग्वेद में यत्र तत्र अनेक नदियों और पर्वतों के नाम मिलते हैं। हिमालय पर्वत का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। हिमालय की एक चोटी को मुजवंत कहा गया है, जो सोम के लिए प्रसिद्ध थी। पश्चिम की ओर कुभा या काबुल, क्रुमू या कुर्रम, गोमती, सुवासु नदियों के उल्लेख से यह पता चलता है कि अफगानिस्तान भी उस समय भारत का ही अंग था। इसके पश्चात पंजाब की 5 नदियों सिंधु, वितस्ता या झेलम, चेनाब, रावी, विपाशा या व्यास का उल्लेख हुआ है। साथ ही शतुद्री या सतलज, सरस्वती, यमुना तथा गंगा के नाम भी मिलते हैं। इतरे ब्राह्मण गांधार क्षेत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार वैदिक भूगोल के अंतर्गत वर्तमान समय का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्व राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि सभी सम्मिलित थे। यही भूभाग सैंधव सभ्यता के अधिकार क्षेत्र में भी था। ऋग्वैदिक सभ्यता के प्रमुख तत्व, राजनीतिक संगठन। आर्य कई जनों में विभक्त थे। इनमें 5 जनों के नाम अक्सर मिलते हैं, अनु, द्रुहा, यदु, पुरु, तुर्वस। इन्हें पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होता था। परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था, जिसे कुल कहा जाता था। कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम वस्तुतः आत्मनिर्भर होते थे। ग्राम की सुरक्षा के लिए ऊंचे टीले पर एक दुर्ग बना दिया जाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहा जाता था। ग्रामणी संभवतः नागरिक तथा सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्य करता था। ग्राम से बड़ी संस्था विश्व होती थी, जिसका स्वामी विश्वपति कहलाता था। अनेक विषयों का समूह जन होता था। जन के अधिपति को जनपद कहा जाता था या राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया है, किंतु यह प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सूतक नहीं है। एक स्थान पर कई राष्ट्रों के राजा का उल्लेख है। आदियों के ये विभिन्न जन परस्पर लड़ा करते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख हुआ है, जो भारतों के राजा सुदास के साथ हुआ था। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था, जिसमें उपयुक्त 5 जनों के अतिरिक्त 5 लघु जनजातियों अनिल, पक्त, भलानस, शिव तथा विषाणिन के राजा सम्मिलित थे। ऋषि विश्वामित्र इस संघ के पुरोहित थे। यह युद्ध पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसे हुए पूर्वकालीन जन तथा ब्रह्मवर्त के उत्तरकालीन आर्यों के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया था। इसमें भारत जन के स्वामी सुदास ने रावी नदी के तट पर एक भीषण युद्ध में 10 राजाओं के इस संघ को परास्त किया, और इस प्रकार वह ऋग्वैदिक कालीन भारत का सर्वोपरि सम्राट बन गया। भरत जन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यह ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था, जो सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच के प्रदेश में निवास करता था। ऋग्वेद काल में सामान्यतः राजतंत्र का ही प्रचलन था। राजन शब्द का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। राजा को जन का रक्षक या गोप्ता जनस्य तथा दुर्गों का भेदन करने वाला या पुराभेत्ता कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध के वातावरण में सेना और जाति का नेतृत्व करने के लिए राज संस्था का उदय हुआ। इस समय राज्य छोटे होते थे तथा एक राज्य में सामान्य तौर से एक ही जन के लोग निवास करते थे। राजा युद्धों में स्वयं जन का नेतृत्व करता था। राजा का पद इस समय दैवी नहीं समझा जाता था। प्रारंभ में उसकी स्थिति कबायली मुखिया जैसी ही थी। कालांतर में सम्राट शब्द का उल्लेख विश्वस्य भुवनस्य राजा या संपूर्ण संसार का राजा की अवधारणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि जनपद राजपद अत्यंत गौरवशाली एवं प्रतिष्ठित समझा जाने लगा। शतपथ ब्राह्मण में राज्य तथा साम्राज्य में भेद करते हुए साम्राज्य को राज्य से बड़ा बताया गया है। अवरम ही राज्यम परम साम्राज्यम। राजा विशाल एवं भव्य राजमहल में निवास करता था। एक स्थान पर सहस्त्रों द्वारों वाले गृह सहस्त्रम द्वारम गृहम तथा दूसरे स्थान पर राजप्रसाद को सहस्त्र स्तंभों वाला सभा स्थान कहा गया है। प्रारंभ में राष्ट्र की सारी प्रजा मिलकर राजा का चुनाव करती थी, परंतु बाद में यह पद अनुवांशिक हो गया। जेपी शर्मा का विचार है कि इस काल के कुछ जनों में गणराज्यात्मक यह पद जो गणराज्यात्मक व्यवस्था भी प्रचलित थी। दसवें मंडल में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख है। राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना था। रक्षा के बदले प्रजा उसे उपहार आदि देती थी। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। इसका प्रयोग भेंट तथा देवताओं को चढ़ावा के अर्थ में किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रजा स्वेच्छा इसे राजा को देती थी अथवा यह अनिवार्य कर था। लगता है कि जन के लोग स्वेच्छा से इसे राजा को प्रदान करते थे, किंतु विजित जातियों से यह अनिवार्य रूप से लिया जाता था। बलि मुख्यतः अन्न के रूप में दिया जाता था। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध का नेता होता था। वह व्यक्तिगत रूप से युद्धों में भाग लेता था। राजा के वैधानिक तथा न्यायिक कार्यों के विषय में ऋग्वेद से कोई सूचना नहीं मिलती है। सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर सभा का उल्लेख हुआ है, किंतु उनसे उसके कार्यों पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। ऐसा प्रतीत होता है कि सभा कुलीन अथवा वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। इन दोनों ही संस्थाओं का शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता था। राजा के अभिषेक के लिए भी इनकी सम्मति आवश्यक समझी जाती थी। ऋग्वेद में न केवल राजा तथा समिति के बीच पूर्ण सहमति अपितु समिति के सदस्यों के बीच परस्पर मतैक्य पर भी बल दिया गया है। ऋग्वेद में पुरोहित सेनानी तथा ग्रामणी इन तीनों अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। युद्ध के समय पुरोहित राजा के साथ जाता था तथा उसकी विजय के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था। शिक्षक पथ प्रदर्शक तथा मित्र के रूप में पुरोहित राजा का मुख्य साथी होता था। राजा पुरोहितों का बड़ा सम्मान करते थे, उनका प्रभाव शासन पर भी था। ऋग्वेद में वशिष्ठ विश्वामित्र आदि पुरोहितों के नाम मिलते हैं, जिनकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी। सेनानी राजा के आदेशानुसार युद्ध में कार्य करता था। शांतिकाल में संभवतः उसे नागरिक कार्यों को भी करना पड़ता था। ग्रामणी प्रशासनिक और सैनिक कार्यों के लिए ग्राम का नेता होता था। वह ग्रामीण जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। स्पष्ट या गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है, जिनका उपयोग राजा करता था। इसके अतिरिक्त और भी राज कर्मचारी रहे होंगे, परंतु उनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। ऋग्वैदिक काल के विधि तथा न्याय व्यवस्था के विषय में हमें निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। न्याय वितरण का कार्य संभवतः पुरोहित की सहायता से राजा ही करता था। चोरी बेईमानी धोखाधड़ी आदि अपराधों के उदाहरण मिलते हैं। रात में पशुओं की चोरी एक आम अपराध था, मृत्युदंड की प्रथा नहीं थी। शारीरिक दंड तथा जुर्माने किए जाते थे। हत्या करने के अपराध में धनदान द्वारा मुक्त होने की प्रथा थी। एक व्यक्ति को सतदाह कहा गया है, क्योंकि उसके जान की कीमतें 100 गायें थी। अपराधी को खूंटों से बांधे जाने का भी उल्लेख मिलता है। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में सम्राट के अतिरिक्त राजन तथा राजक शब्दों का प्रयोग मिलता है तथा उनकी स्थिति में विभेद भी किया गया है। छोटे राजाओं को राजा तथा बड़े को राजन तथा सबसे बड़े को सम्राट कहा गया है। कवच तथा दुर्ग का उल्लेख उच्च स्तरीय सैनिक निपुणता का सूचक है। सामाजिक जीवन, परिवार। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार पितृ सत्तात्मक होता था, जिसमें पिता अथवा बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था। ऋग्वेद में कुछ ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि पिता के अधिकार असीमित होते थे। वह परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड दे सकता था। एक स्थान पर ऋजास्व का उल्लेख है, जिसके पिता ने उसे अंधा बना दिया था। वरुण सूक्त में सुनासेप के आख्यान से ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पिता अपने संतान को बेच सकता था, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि पिता और पारिवारिक सदस्यों के संबंध कटुतापूर्ण होते थे। ऐसे उदाहरणों को अपवाद स्वरूप ही समझना चाहिए। पिता परिवार के सदस्यों के सुख दुख का पूरा ख्याल रखता था। हाँ, इतना अवश्य था कि राज्य पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। संयुक्त परिवार की प्रथा थी। विवाह सूक्त 10 मेरुमंडल के 35वें सूक्त से ज्ञात होता है कि नवविवाहिता वधु अपने पति के घर में सास, ससुर, देवर, ननद के ऊपर अधिकार रखने वाली साम्राज्ञी बन जाती थी। ब्राह्मण अपने के किसी न किसी आदि ऋषि की संतान मानते थे। इनमें कल्पित वंश की गोत्र कहा जाता था, जिसकी संख्या मूलतः 7 मिलती है। भार्गव, अंग्रसर, आंगिरस, आत्री, कश्यप, वशिष्ठ, आगत तथा कौशिक। वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। सभी व्यक्ति जन के सदस्य समझे जाते थे तथा सबकी समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी। जन के निर्माण के पूर्व के लोगों को अर्य तथा कृषि अथवा चर्षण कहा गया है। अर्य का शाब्दिक अर्थ उत्पादन सामर्थ्य होता है, किंतु भारतीय संदर्भ में इससे तात्पर्य सामान्य जन से है। चर्षण शब्द का प्रारंभ व्यवहार में यायावर या घुमक्कड़ प्रजा का द्योतक था, किंतु जब स्थायी निकास प्रारंभ हो गया तब प्रजा को कृष्ट कहा गया। इस प्रकार जब आर्य संचरणशील थे तब उन्हें चर्षण तथा जब वे कर्षणशील बने तो उन्हें के लिए कृष्ट शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें सभी प्रकार के लोग शामिल थे। ऋग्वेद में वर्ण का शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ग का कहा गया है। प्रारंभ में हम तीन वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र तथा विषय। जब आर्य भारत में आए तब उन्हें अनार्यों से संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए कुछ ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता हुई जो असुरों से उनकी रक्षा कर सकें। इस कार्य के लिए उन्होंने अपने में से कुछ उत्साही वीरों को चुना और उन्हें छत्र नाम दिया। छत्र का अर्थ है छत अर्थात हानि से रक्षा करने वाला। ऋग्वेद में छत्र शब्द का प्रयोग सैन्य बल तथा राज्य क्षेत्र तथा क्षत्रिय का प्रयोग उसमें निवास करने वालों के लिए हुआ है। नायक तथा योद्धाओं को भी क्षत्रिय कहा गया है। इसी प्रकार यज्ञों को कराने के लिए जो व्यक्ति चुने गए उन्हें ब्रह्म कहा गया। यह विद्वान तथा गुणवान लोगों का वर्ग था। कहीं कहीं ब्राह्मण शब्द का प्रयोग पुरोहित के लिए भी मिलता है। शेष जनता को विष नाम से संबोधित किया जाता था। ऋग्वेद में विष का उल्लेख विविध अर्थों जैसे जनजाति समुदाय, सन्निवेश समूहों के मनुष्यों के समूह, सामान्य प्रजा आदि में किया गया है। आर एस शर्मा का विचार है कि इससे तात्पर्य संचरणशील जनजाति से है, जो चारागाहों की खोज में सदा भ्रमण करती रहती थी। कालांतर में यह उत्पादन की प्रक्रिया से संबद्ध हो गई, परंतु इन तीनों वर्णों में कोई कठोरता नहीं थी। एक ही परिवार के लोग ब्रह्म, क्षत्र या विष हो सकते थे। ऐसा प्रतीत होता कि आर्यों ने आर्यों को परास्त कर अपने सामाजिक संगठन में उन्हें स्थान दिया और इस प्रकार कालांतर में एक चौथा वर्ण शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न हो गया। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि शूद्र वर्ण के अंतर्गत केवल अनार्य वर्ण के लोग ही सम्मिलित थे, किंतु इस प्रकार की मान्यता ठीक नहीं है। आर एस शर्मा ने शूद्र वर्ण की उत्पत्ति के ऊपर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए यह प्रतिपादित किया है कि वस्तुतः इस वर्ग में आर्य तथा अनार्य दोनों ही वर्ग के लोग शामिल थे। धार्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं के फलस्वरूप दोनों ही वर्णों के श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। बाद में सभी श्रमिकों की सामान्य संज्ञा शूद्र हो गई। आर्य शिल्पियों के वंशज भी जो अपने प्राचीन व्यवसाय में लगे रहे शूद्र समझे गए। ऋग्वेद में उल्लिखित दास दस्युओं की स्थिति भी इस प्रकार की रही होगी। ऋग्वेद के दसवें मंडल के पूर्व सूक्त में हमें सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। यह कहा गया है कि जब देवताओं ने विराट पुरुष की बलि दी तो उसके मुख भाग से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य या क्षत्रिय, उरु भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। यह वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है, परंतु इस समय भी वर्णों में जटिलता नहीं आई थी और वर्ण जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित होते थे। व्यवसाय परिवर्तन संभव था। ऋग्वेद के एक स्थान पर एक ऋषि कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न हैं, परंतु कभी सभी धन की कामना करते हैं। इससे स्पष्ट है कि व्यवसाय अनुवांशिक नहीं थे तथा जाति व्यवस्था का जो संकीर्ण रूप हमें कालांतर में देखने को मिलता है उससे ऋग्वैदिक समाज निश्चय ही अछूता था। विवाह तथा स्त्रियों की दशा। ऋग्वैदिक समाज में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। वह पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग ले सकती थी। पत्नी से रहित व्यक्ति यज्ञ करने का अधिकारी नहीं था। ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्पष्टतः स्वीकार किया गया है। परिवार में एक पतित्व विवाह ही सामान्यतः प्रचलित थे। यद्यपि कुलीन वर्ग के कुछ लोग कई पत्नियां रखते थे, बाल विवाह एवं विधवा विवाह नहीं होते थे। विवाह में कन्याएं अपना मत दे सकती थी तथा कभी कभी अपने पतियों का चुनाव स्वयं करती थी। भाई बहन एवं पिता पुत्री का विवाह वर्जित था। अंतरजाति विवाह होते थे, परंतु आर्यवर्ण का दासवर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था। कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे जिसे वहत कहते थे। विधिवत संपन्न हुए विवाह को स्त्री पुरुष की किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं कर सकते थे। पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। विवाह का मुख्य उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति करना था। पुत्रों की बहुलता के लिए निरंतर प्रार्थना की जाती थी। एक मंत्र में कहा गया है, हे इंद्रदेव, इस स्त्री को 10 पुत्र प्रदान करो ताकि इसका पति 11वां हुए। दशाश्याम पुत्रान देही पति में कादशम कृदि। कन्याओं का जन्म अभिष्ट नहीं था। पितृसत्तात्मक समाज में पुत्रों की चाह अधिक होना स्वाभाविक ही था। पुत्र ही पिता को अंत्येष्ट संस्कार संपन्न कर सकता था तथा उसी से वंश परंपरा चलती थी। निसंतान व्यक्ति समाज में घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे। एक स्थान पर संतानहीनता को दरिद्रता के समान निंदनीय बताया गया है। पिता पुत्र के अभाव में किसी अन्य को गोद ले सकता था। समाज में सती प्रथा के प्रचलित होने का उदाहरण नहीं मिलता। दशम मंडल के एक सूक्त से पता चलता है कि इस प्रागैतिहासिक प्रथा की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए स्त्री अपने मृत पति के साथ चिता पर लेटती थी तथा फिर उसके संबंधी उसे उठने के लिए आग्रह करते थे। नियोग प्रथा के प्रचलन का संकेत मिलता है जिसके अंतर्गत पुत्र विहीन विधवा पुत्र प्राप्ति के निमित्त अपने देवर के साथ यौन संबंध स्थापित करती थी। समाज में स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी। उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उनकी दीक्षा शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। ऋग्वेद में घोषा, लोपा, मुद्रा, विश्ववारा आदि स्त्रियों के नाम आते हैं जो पर्याप्त शिक्षिता थी तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। स्त्रियों के सामाजिक और धार्मिक अधिकार पुरुषों जैसे ही थे, परंतु दो दृष्टियों से ऋग्वैदिक समाज उन्हें अयोग्य समझता था। प्रथम, उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था तथा द्वितीय, उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। शेष दृष्टियों से वे पुरुषों के ही समान समझी जाती थी। भोजन तथा वस्त्र। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। ऋग्वेद में एक स्थान पर दूध में पकी हुई खीर क्षीर पकौदन का उल्लेख मिलता है। एक अन्य स्थान पर दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। घी में पके हुए मालपुए अपूपम घृतवंतम का भी वर्णन हुआ है। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। या वागू का उल्लेख मिलता है जो जौ की दलिया लगता है। भोजन को मीठा बनाने के लिए मधु का भी प्रयोग किया जाता था। मधु देवताओं को भी चढ़ाया जाता था। मांसाहार का प्रचलन था। ऋग्वेद में नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रायः भेड़ बकरी आदि पशुओं का मांस खाया जाता था। गाय के लिए अघन्या न मानने योग्य शब्द मिलता है। एल बाशम के अनुसार इस शब्द से गाय की आर्थिक महत्ता सूचित होती है, क्योंकि गाय ही विनिमय का माध्यम बनती थी। ऐसा लगता है कि विवाह एवं सम्मानित अतिथि के आगमन आदि के अवसरों पर ही गाय का वध होता था। शतपथ ब्राह्मण अतिथि के सम्मान में विशाल वृषभ अथवा बकरी को मांसाहार के लिए मारे जाने का विधान करता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मांस के लिए गाय का वध धीरे धीरे बंद होने लगा था तथा उसकी पवित्रता बढ़ने लगी। कुछ विद्वानों का विचार है कि पशु बलि के निषेध के पीछे कृषि कार्यों के लिए उसकी उपयोगिता थी, किंतु यह उचित नहीं है। यह दया के कारण था, न कि कृषि व्यापार में उनकी उपयोगिता के कारण। यूरोप चीन आदि में भी कृषि का प्रचार था, किंतु वहाँ गाय बैल मारकर खाए जाते थे। सोम तथा सुरा आलियों के मुख्य पेय थे। सोम अपनी मादकता के लिए प्रख्यात था, जिसे मुजवंत पर्वत पर प्राप्त किया जाता था। यज्ञों के अवसर पर सोम रस पान करने तथा देवताओं को पीने के लिए उसे समर्पित करने की प्रथा थी। इसका पान करने से शरीर में उत्साह भर जाता था और मन में मोहक मस्ती छा जाते थे। ऋग्वेद के नवे मंडल में सोम की स्तुति में कई सूक्त मिलते हैं। एक स्थान पर कर्ण ऋषि दावा करते हैं कि सोम रस पीने के बाद उन्होंने अमृत प्राप्त कर लिया है तथा देवताओं को जान लिया है। ऋग्वेद में सुरा के दुष्परिणामों का उल्लेख मिलता है तथा बताया गया है कि लोग इसे पीकर दुर्मद हो जाते थे और सभा समितियों में लड़ने झगड़ने लगते थे। सुरा की गणना क्रोध, द्युत, अज्ञान आदि अनिष्टकारी वस्तुओं के साथ की गई है। इसे निंदनीय तथा त्याज्य बताया गया है। महादेवन का विचार है कि सोम वस्तुतः सैंधव निवासियों का पेय था और आर्यों ने उन्हीं से इसे ग्रहण कर लिया था। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन, सामग्री की चर्म से बनाए जाते थे। भेड़ की ऊन का ही वस्त्र प्राय प्रयुक्त होता था। गांधार प्रदेश की भेड़ें प्रसिद्ध थी। वस्त्र तीन प्रकार के होते थे, निवी, वासस तथा अधिवासस। निवी जो कमर के नीचे पहना जाता था, वासस जो कमर के ऊपर पहना जाने वाला प्रमुख वस्त्र था, अधिवासस जो ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी होती थी। लोग वस्त्रों को काटने तथा सीने की कला से परिचित थे। कभी कभी वस्त्रों पर सोने की तारों से कढ़ाई की जाती थी। स्त्री पुरुष दोनों पगड़ी धारण करते थे, दोनों आभूषण पहनते थे। कानों में कर्णफूल, गले में नेस्क, हाथों में कड़े, पैरों में खड़ुए, छाती पर सुनहले पदक तथा गले में मड़ियों की हार या मणिग्रीवा आदि आभूषण पहने जाते थे। लोग केश प्रसाधन की कला से भी परिचित थे। स्त्रियां बालों का जूड़ा बनाती तथा पुरुष दाढ़ी एवं जटा रखते थे। कुछ लोग छुरे से दाढ़ी मूछ भी बनवाते थे। ऋग्वेद में नाई को वक्ता कहा गया है। आमोद प्रमोद, ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण पूर्णतया उपयोगितावादी था। वे नृत्य एवं संगीत में आनंद लेते थे। रथ दौड़, घुड़ दौड़ था, पासा खेलना भी उनके आमोद प्रमोद के साधन थे। जुआ, द्युत भी खेला जाता था। द्युत क्रीड़ा के समय लोग हार जीत के दाव लगाते थे। एक स्थान पर जुआरी पुत्र को पिता द्वारा डांटे जाने का उल्लेख है। स्त्री तथा पुरुष दोनों झांझ मजीरे के बाजों के साथ नृत्य में भाग लेते थे। अन्य वाद्यों में दुदुम्भी, करकरी, वीड़ा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। किसका विचार है कि ऋग्वैदिक काल में धार्मिक नाटकों का प्रदर्शन भी होता था। आर्थिक जीवन, कृषि एवं पशुपालन। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, अतः उनके आर्थिक जीवन के मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद ने लांगल तथा सिर, हल के लिए फाल, सीता, हल फाल से जुटी हुई भूमि, पूर्ण आदि का उल्लेख है। फाल संभवतः लकड़ी का बना होता था। हल में 6, 8 या 12 तक बैल जोड़े जाते थे। और शब्द का भी उल्लेख मिलता है। उल्लेखनीय है कि आज भी ग्रामीण भाषा में हल को हर कहा जाता है। इससे तात्पर्य हर से हो सकता है। बुआई कटाई मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। खेत को हल बैल की सहायता से जोत कर उसमें बीज बोया जाता था। पकी हुई फसलों को काटने के लिए हंसिए दात्र श्रेणी का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई प्रायः नहरों द्वारा होती थी। कूप तथा अवट खोद कर बने हुए गड्ढे कुल्या या नहर अश्म चक्र रहट की चरखी आदि का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। चक्र या रहट की सहायता से कूप से पानी निकाला जाता था तथा नालियों द्वारा उसे खेतों तक पहुंचाया जाता था। लोग खाद के प्रयोग से परिचित थे। खेती से उत्पन्न होने वाले अन्नों में यव एवं धान्य का उल्लेख हुआ है, परंतु इन दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। बाद में इनका अर्थ क्रमशः जव तथा चावल हो गया, परंतु ऋग्वैदिक आर्य चावल से परिचित नहीं थे। विविध उल्लेख सुविकसित कृषि कर्म को प्रमाणित करते हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पशु आर्यों की संपत्ति समझे जाते थे। कृषक पशुओं के वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे। सैनिक पशुओं को लूट के धन में पाने की आशा रखते थे तथा पुरोहित पशुओं से ही पुरस्कृत किए जाते थे। मुख्यतः गाय विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद की कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। अन्य पशुओं में बैल घोड़ा भेड़ बकरी गधा कुत्ता आदि प्रमुख थे। बैलों से हल जोतने तथा गाड़ी खींचने का काम लिया जाता था। घोड़ा भी आर्यों का प्रिय पशु था जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। कुछ सूक्तों में ददृका नामक एक दैवी अश्व की प्रशंसा की गई है। आर्य हाथी से परिचित नहीं थे। पशुओं के कानों पर स्वामित्व सूचक चिन्ह बना दिए जाते थे। गाय को अष्टकर्णी छेदी हुई कानों वाली अथवा कानों पर आठ चिन्ह के अंकित कहा गया है। आर्य शर्मा का मत है कि ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः पशुचारी थे तथा कृषि का उनके जीवन में गौड़ स्थान था। यही कारण है कि ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। इसके 10,462 मंत्रों में केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है, किंतु हम देख चुके हैं कि ऋग्वेद में राष्ट्र राज्य राजा जैसे शब्द, संसद सभा समिति जैसी संस्थाएं तथा अध्यक्ष सेनानी दूत राष्ट्रपति जैसे पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। इनसे सूचित होता है कि समाज पूर्णतया ग्रामीण नहीं था, अपितु इसमें ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही तत्व साथ साथ विद्यमान थे। ग्रामों का विवरण सूचित करता है कि उन्हें काफी बड़ी बस्तियां भी थी जिनमें अनेक घोड़ों के रथ पर बैठकर लोग अपने घर से उत्सव आदि में जा सकते थे। अतः ऋग्वैदिक समाज को पूर्णतया पशुचारी अथवा घुमक्कर कहना समीचीन नहीं होगा। सिंधुताब वैदिक समाज के सांस्कृतिक स्तर में बहुत अधिक विभिन्नता नहीं है। वैदिक काल में भी संगठित प्रशासन, दुर्गीकृत भवन, स्थल और जल व्यापार के उदाहरण मिलते हैं। न तो सिंधु सभ्यता मात्र नागरिक थी और न ही वैदिक सभ्यता मात्र पशुपालक अथवा घुमक्कर, दोनों में ही नगर तथा ग्राम्य तत्व विद्यमान थे। व्यापार और वाणिज्य मूलतः कृषक एवं पशुपालक होते हुए भी आर्य व्यापार और वाणिज्य के प्रति उदासीन नहीं थे। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणि वर्ग के लोग करते थे। पणि शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कई स्थानों पर हुआ है। इसके समीकरण के विषय में विद्वानों में मतभेद है। जीमन तथा लुडवीक इस शब्द का अर्थ व्यापारी बताते हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं तथा पणियों के बीच संघर्ष तथा देवताओं द्वारा उनके संहार का वर्णन मिलता है। इस आधार पर लुडवीक का विचार है कि वे आदिम व्यापारी थे जो अरब तथा उत्तरी अफ्रीका के व्यापारियों की भांति काफिलों में चलते थे। अपने जान माल की सुरक्षा के लिए उनके पास सेना होती थी। वे आवश्यकता पड़ने पर अपनी वस्तुओं की रक्षा के लिए आर्य आक्रमणकारियों से युद्ध करने को तैयार रहते थे। ए सी दास की मान्यता है कि पणि का आर्य व्यापारी ही थे जो सप्तसिंधु से निष्कासित होने के उपरांत फोनेसिया में जाकर बस गए थे। कुछ अन्य विद्वान पणि का समीकरण बेबीलोनियनों, पांडवों आदि से करते हैं। लगता है कि वे आदि व्यापारी ही थे जो अपने कार्य के कारण वैदिक ऋषियों की निंदा के पात्र बन गए। कालांतर में वे वैश्य वर्ण के साथ संयुक्त हो गए। पणि अपनी कृपणता के लिए प्रसिद्ध थे। वे ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें वेकनाट या सुदकोर कहा गया है। व्यापार अदल बदल या बार्टर प्रणाली पर आधारित था। अनेक स्थानों पर वस्तुओं को खरीदते समय मोल भाव किए जाने का उल्लेख मिलता है। विनिमय के माध्यम के रूप में निस्क का उल्लेख हुआ है, परंतु इसका समीकरण विवादग्रस्त है। संभवतः प्रारंभ में यह हार जैसा कोई स्वर्ण आभूषण था, परंतु बाद में सिक्के के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। कपड़ा चादर तथा चमड़े का व्यापार होता था। स्थल का व्यापार मुख्यतः रथों एवं बैलगाड़ियों द्वारा होता था। ऋग्वेद में समुद्र शब्द आया है। कुछ विद्वान समुद्र का अर्थ विशाल जल समूह लगाते हैं। राधा कुमुद मुखर्जी के मतानुसार ऋग्वेद में समुद्र का प्रयोग निश्चित रूप से सागर के लिए हुआ है। समुद्र की विशालता, गर्जन तथा तरंगों का उल्लेख मिलता है, जहाँ नदियाँ समाहित होती थीं। एक स्थान पर भुज्यु की समुद्र यात्रा का वर्णन है, जिसने मार्ग में जलयान के नष्ट हो जाने पर आत्मरक्षा के लिए अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की। अश्विनी कुमारों ने उसकी रक्षा के लिए 100 पतवारों वाला जहाज या सतारिप्रा भेजा। यह उल्लेख समुद्री यात्रा की ओर संकेत करता है। एक अन्य स्थल पर समुद्र से प्राप्त होने वाले धन वसूनी समुद्रात का उल्लेख मिलता है तथा उसे प्रदान करने के निमित्त सोम का आह्वान किया जाता है। पतवार को अरित्र तथा नाविक को अरित्री कहा गया है। इन उल्लेखों से विकसित सामुद्रिक व्यापार का परिचय मिलता है। व्यवसाय एवं उद्योग धंधे। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय अनुवांशिक नहीं थे, तथापि ब्राह्मण मुख्यतः यज्ञिक क्रियाओं को संपन्न कराते थे। क्षत्रिय युद्ध संबंधी कार्यों में व्यस्त रहते थे। वैश्य कृषि, पशुपालन तथा धन उधार देने का काम करते तथा शूद्र मुख्यतः तीनों वर्णों की सेवा करते थे, परंतु शूद्रों के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्णों के लोग किसी भी पेशे को अपना सकते थे। ऋग्वैदिक कवियों में अनेक राजन्य वर्ग के हैं। ब्राह्मण भी यदाकदा धन उधार देने का कार्य करते थे। इन चार वर्णों के अतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ अन्य व्यवसायियों के भी नाम मिलते हैं। इनमें तच्छा या बढ़ई, कर्मा या धातु कर्म करने वाला, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय या जुलाहे, कुंभकार आदि प्रमुख हैं। बढ़ई या तच्छा संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। वह सभी प्रकार की लकड़ी की वस्तुओं, विशेषकर रथ तथा गाड़ियों का निर्माण करता था। आर्यों के सामरिक जीवन में रथों का अधिक महत्व होने के कारण तच्छा की सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक बढ़ी हुई थी। कुछ लोग धातुओं को गलाने तथा उन्हें पीट कर विविध वस्तुएं बनाने के कार्य में भी कुशल थे। अयस्क नामक धातु का उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है, जिसकी सहायता से घरेलू उपयोग के बर्तन आदि बनाए जाते थे। अयस्क की पहचान असंदिग्ध रूप से नहीं की जा सकती। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिकार लोहे से परिचित नहीं थे। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों ही करते थे। सूत, रेशम तथा ऊन से वस्त्र बनाए जाते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश के सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात था। पुरुषणी या रावी नदी के तट पर बढ़िया किस्म के रंगीन ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। गांधार प्रदेश की भेड़ें अपने चिकनी ऊन के लिए सर्वत्र विख्यात थी। चर्म उद्योग भी ज्ञात था। बैल आदि पशुओं के चमड़े से कोड़े, लगाम, डोरी, थैले आदि बनाए जाते थे। भट्टी में धातु गलाने वाले को धात्या तथा द्रविता एवं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुलाल कहा गया है। इसके अतिरिक्त वैद्य या भीषक, नर्तक नर्तकी, नाई या वाप्त्री, गायक वादक नर्तक तथा सुरा बेचने वालों का भी अलग वर्ग था। ऋग्वैदिक काल में इनसे कोई भी व्यवसाय तुच्छ नहीं समझा जाता था, बल्कि सभी की अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा थी। धर्म तथा धार्मिक विश्वास। ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन जितना ही सरल था, धार्मिक जीवन उतना ही अधिक विषद तथा जटिल था। यहाँ हमें प्रारंभ में बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। यास के निरुक्त में देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है, पृथ्वी में अग्नि, अंतरिक्ष में इंद्र या वायु में आकाश या आकाश में सूर्य। ये 3 देवता 3 लोकों के स्वामी थे। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 कही गई है। आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं, जिनका मानवीकरण किया गया है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता या द्युत स्थान या आकाश के देवता। पृथ्वी के देवता के अंतर्गत पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, अपान पात, मातृष्वन तथा नदियों के देवता आदि थे। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र, वायु, वात, पर्जन्य, आपह, यम, प्रजापति, अदिति आदि थे। द्युतस्थान या आकाश के देवता के अंतर्गत देवोत, वरुण, मित्र, सूर्य, सवित्री, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन आदि थे। इसके अतिरिक्त कुछ अमूर्त भावनाओं के द्योतक देवता भी हैं, जैसे श्रद्धा, मन्यु, धात्री, विधात्री आदि। ऋग्वैदिक मंडल में पुरुष देवताओं की संख्या ही अधिक है। कुछ देवियों के भी नाम मिलते हैं। सिंधु नदी को देवी के रूप में मान्यता दी गई है। जंगल की देवी को आरण्यानी कहा गया है। वाग देवी सरस्वती की भी स्तुति की गई है। समस्त देव समूह में इंद्र, वरुण तथा अग्नि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। वह प्रधानतः युद्ध का देवता था। आदियों का विचार है कि उसी ने असुरों पर विजय दिलाई। इंद्र की प्रमुख संज्ञा पुरंदर थी। वह मेघों को रोककर जल की वर्षा करता था। वरुण जगत का नियंता, देवताओं का पोषक तथा ऋत का नियामक था। वह आकाश, पृथ्वी तथा सूर्य का भी निर्माता था। वायु उसका स्वास्थ्य था तथा वह ऋतुओं को नियमित करता था। वह सभी मनुष्यों के कार्यों का निरीक्षण सूर्य रूपी नेत्र से करता था तथा पापियों को अपने पास में आबद्ध कर लेता है। उसे जल का भी स्वामी कहा गया है। ऋग्वेद में लगभग एक चौथाई सूक्त इंद्र को समर्पित है। वैदिक काल के बाद वरुण का महत्व घट गया तथा वह एकमात्र जल का देवता रह गया। पृथ्वी के देवताओं में अग्नि का महत्व सबसे अधिक था। कुछ स्थानों पर उसे देव तथा पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। इसी के द्वारा यज्ञ संपन्न होते थे तथा यही आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाता था। दैनिक कार्यों में अग्नि का उपयोग था। इसी के द्वारा दाह कर्म किया जाता था। अग्नि का संबंध विभिन्न देवताओं से जोड़ा गया है। अग्नि को सूर्य का ही रूप कहा गया है। वह चर अचर का ज्ञाता है, इसलिए इसे जाति वेदक कहा गया। सूर्य के समान सर्वद्रष्टा होने के कारण उसका नाम भवन चक्षु है। वह राक्षसों, पिशाचों आदि का विनाशक तथा मनुष्यों का मित्र एवं रक्षक था, जिसके कारण उसे पिता, बंधु, मित्र भी कहा गया है। शीत, रोग, अंधकार, हिंसक पर सभी उसके भय से दूर भागते हैं तथा इस प्रकार अग्नि का महत्व विविध प्रकार का था। अग्नि के बाद पृथ्वीवासी देवताओं में सोम महत्वपूर्ण था। यह देवताओं का प्रमुख पेय भी था, जिसमें देवत्व का आरोपण किया गया। वह आनंद तथा प्रफुल्लता का देवता बन गया। आकाश के देवताओं में सूर्य सर्व प्रमुख थे, जिनकी स्तुति पूरे 10 सूक्तों में की गई है। उन्हें सर्वदर्शी एवं स्पष्ट कहा गया है। सविता उन्हीं का एक रूप है। अश्विन नाम दो युग्म देवताओं के कुशल चिकित्सक हैं। उन्हें नासत्य कहा जाता है। इंद्र, अग्नि और सोम के पश्चात सर्वाधिक सूक्त इन्हीं को समर्पित हैं। अधिक वैदिक आर्यों ने अपने देवताओं की कल्पना मनुष्य रूप में ही किया तथा उनमें समस्त मनोचित गुणों को आरोपित कर दिया। देवता तथा मनुष्य में मुख्य अंतर यह था कि देवता अमर माने गए, जबकि मनुष्य मूर्त मात्र था। देवता मनुष्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते थे तथा उनमें मनुष्य जैसी दुर्बलताएं भी नहीं थी। सोमरस देवताओं का मुख्य पेय कहा गया है। रुद्र के सिवाय अन्य देवताओं का स्वरूप मंगलकारी बताया गया है। वे आसुरी शक्तियों का दमन करते हैं तथा प्रकृति की व्यवस्था के नियामक है। सज्जनों को पुरस्कृत एवं दुर्जनों को दंडित करना उनका कार्य है। उनका निवास स्थान स्वर्ग या विष्णु का तृतीय पद बताया गया है, जहाँ सोम रस पान करते हुए वे सुखपूर्वक निवास करते हैं। इस देव समूह में सर्वप्रधान देवता कौन है, यह निर्धारित करना कठिन है। ऋग्वैदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना करी है, उसे ही सर्वोच्च मानकर उसने संपूर्ण गुणों का आरोप कर दिया है। मैक्स मुलर ने इस प्रवृत्ति को हेनोथिज्म कहा है। यहाँ उल्लेखनीय है कि ऋग्वैदिक देवता प्रधानतः पुरुष देवता हैं। कभी कभी देवताओं की कल्पना पशु रूप में भी मिलती है, जैसे इंद्र या दौस को वृषभ एवं सूर्य को अश्व के रूप में कल्पित किया गया है। परंतु इससे ऐसा समझ लेना कि ऋग्वैदिक आर्य पशुओं की भी पूजा करते थे समीचीन नहीं होगा। किसी पशु को पूर्वज मानकर उसे पवित्र देवता मानने का विश्वास भी ऋग्वेद में नहीं मिलता है। कहीं कहीं इंद्र की मूर्ति को शत्रुओं से रक्षा करने वाली कहा गया है। इसे गंडे ताबीज में विश्वास की कुछ झलक मिलती है। देवताओं की उपासना यज्ञों द्वारा की जाती थी। यज्ञ में दूध, अन्न, घी, मांस तथा सोम की आहुतियां दी जाती थी। यज्ञ विधि विधान अत्यंत जटिल थे। ऋग्वेद में धर्म शब्द वेद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका संबंध नैतिकता से नहीं है। धर्म के अतिरिक्त हमें दूसरा शब्द ऋत मिलता है, जिसे पांडे ऋत की व्युत्पत्ति धातु से मानते हुए इसका अर्थ गति और गति का मार्ग हेतु लक्ष्य करते हैं। सभी देवताओं का संबंध ऋत या विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋत का सत्य तथा अविनाशी सत्ता, ऋग्वेद में इसकी बड़ी ही सुंदर कल्पना मिलती है। बताया गया है कि सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की ही उत्पत्ति हुई थी, फिर रात्रि जन्मी और फिर तरंगित समुद्र। तरंगित समुद्र में संवत्सर का जन्म हुआ। जंगम विश्व के स्वामी ने दिन तथा रात्रि बनाई, विधाता ने सूर्य और चंद्र को पूर्वत संकल्पित किया, आकाश और पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा सूर्य को। इस प्रकार ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। देवता ऋत के स्वरूप हैं तथा ऋत से उत्पन्न होते हैं तथा वे अपनी दैवी शक्तियों के द्वारा ऋत की रक्षा करते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ने ऋत को सदाचार का मार्ग तथा बुराइयों से रहित यथार्थ का पथ बताया है। धर्म तथा ऋत का संबंध स्पष्ट रही है। कालांतर में दोनों परस्पर संयुक्त हो गए तथा धर्म का स्वरूप नैतिक हो गया। देव उपासना मुख्यतः भौतिक कल्याण जैसे युद्ध में विजय, अच्छी खेती, संतान प्राप्ति आदि के लिए की जाती थी। उपासना का लक्ष्य परमार्थिक सुख नहीं था। देवता आहुतियों द्वारा प्रसन्न होते तथा फल प्रदान करते थे। कुछ यज्ञ अत्यंत विस्तृत एवं खर्चीले होते थे, जिनका अनुष्ठान सामान्य मनुष्य के वश की बात नहीं थी। सोम यज्ञ ऋग्वैदिक आदियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध यज्ञ था, जिसका विस्तृत विवरण मिलता है। यह एक दिन या एका दो दिन से 12 दिन अहीन तथा 13 दिनों से लेकर 1000 वर्ष तक संपन्न होने वाला यज्ञ था। इसके लिए 3-3 वेदियों तथा 80 बहुसंख्यक पुजारियों, जिसमें 4 प्रधान होते थे, की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि इसमें सोमलता के रस की आहुति दी जाती थी। अतः इसका नाम सोमयज्ञ अथवा सामयाग पड़ गया। इसकी देवसाध्यता के कारण केवल राजा ने और संपन्न वर्ग के ही लोग इसे कर पाते थे। ऋग्वेद का दृष्टिकोण स्पष्ट कुलीन तंत्रीय था, जिसमें जनता के लिए उपयुक्त लोकप्रिय धर्म बहुत कम मिलता है, परंतु देवी देवताओं की बहुलता एवं कर्म कांडों की जटिलता बहुत दिनों तक चल नहीं सकी। शीघ्र ही ऋग्वैदिक ऋषियों ने बहुदेववाद को चुनौती दी। देवताओं की संख्या कम करने के लिए कुछ को मिलाकर एक ही श्रेणी में कर दिया। पृथ्वी तथा आकाश को मिलाकर द्यावा पृथ्वी नाम दिया गया। मित्र वरुण उषा रात्रि को संयुक्त किया गया। मरुतो आदित्यों तथा अश्विनों को भी एक श्रेणी मानी गई, किंतु उन्हें इतने से ही संतोष नहीं हुआ। वे तो सर्वोच्च देवता की खोज करना चाहते थे। उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई तथा अपने चिंतन के अंतिम अवसर पर उन्होंने यह जान लिया कि सत एक है। ज्ञानी लोग उसके अनेक नामों से पुकारते हैं, यज्ञ, अम, माता, ऋष आदि। प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में वैदिक ऋषि संपूर्ण जगत को एक रूप में देखते हैं। श्रेष्ठ को विराट पुरुष के आत्मयज्ञ का परिणाम बताया गया है। उसे विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, अदिति आदि नाम दिए गए हैं। मानव चिंतन के इतिहास में यह अद्वैतवाद की प्रथम अनुभूति है। इसके अनुसार विराट पुरुष सहस्त्र सिर, नेत्र तथा सहस्त्र पैरों से युक्त हैं। वह संपूर्ण पृथ्वी में व्याप्त हैं तथा उससे 10 अंगुल भी परे नहीं हैं। जो कुछ भी है तथा होने वाला है, वह सब पुरुष ही है। वही अमृतत्व का स्वामी है। अन्न से पोषित होने वाले समस्त प्राणियों में उसी की सत्ता है। इसकी इतनी बड़ी महिमा थी और उससे भी महान वह पुरुष था। समस्त विश्व उसका एक पाद है तथा उसका 3 पाद बाहर अंतरिक्ष में है। उसके 1 पाद से समस्त भूत व्याप्त है तथा 3 पाद द्विलोक स्थित अमृत है। यही चारों ओर चराचर जगत में व्याप्त है। इसी प्रकार एक अन्य सूक्त में बताया गया है कि समस्त देवताओं के भीतर वर्तमान सामर्थ्य एक ही है। महत देवा माम सुरत्व में कम ऋग्वेद के नाथदेव सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन प्राप्त होता है। देवताओं को असुर, असु अर्थात प्राण शक्ति संपन्न कहा गया है। कालांतर में यह शब्द राक्षसों का सूचक बन गया। ऋग्वैदिक कार्यों के पारलौकिक विषयक विचार अधिक स्पष्ट नहीं है। एक स्थान पर मितात्मा को यम द्वारा शासित लोक में शांतिपूर्वक सुख के साथ निवास करने वाला कहा गया है। स्वर्ग का बड़ी ही सुंदर एवं मनोरम कल्पना मिलती है। बताया गया है कि वहाँ दिन, रात तथा जल सभी सुंदर तथा आनंददायक होते हैं। वहाँ मनुष्य बलिष्ठ तथा सुंदर शरीर को प्राप्त करता है और उसका शरीर सभी प्रकार की दुर्बलताओं, आदि व्याधि आदि से मुक्त हो जाता है। पुण्यकर्मी प्राणी अपने यज्ञादि कर्मों का फल वहाँ प्राप्त करते हैं। वहाँ अश्वत्थ वृक्ष है, जिसके नीचे यम देवताओं के साथ पान करते हैं। नरक की कल्पना दुष्कर्मियों के लिए दंड स्थान के रूप में की गई है। ऐसा लगता है कि लोग पाप कर्म के दुष्परिणामों से डरते थे। पाप ऋत के उल्लंघन से पैदा होता था। ऋत के मार्ग को श्रेष्ठ कहा गया है। सुगा ऋतस्य पंथा, देवताओं की उपासना, यज्ञ विधि विधानों का अनुष्ठान तथा ईश्वर की इच्छा के अनुकूल आचरण करना, यही नैतिक जीवन के आदर्श थे। ऋग्वैदिक ऋषियों के विचार पूर्णतः आशावादी थे। जिसमें निराशावाद की कोई झलक नहीं मिलती। जीवन चाहे सत्य रहा हो या झूठ, वे उसका पूर्ण उपभोग करना चाहते थे। ऋग्वेद दीर्घ आयु, रोगों से मुक्ति, वीर संतति, धन शक्ति, खान पान की अधिकता, शत्रुओं पर विजय आदि की प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। ऋग्वैदिक ऋषि ने जीवन को बंधन मानकर उसके सुखों की उपेक्षा करने का कभी प्रयास नहीं किया और न ही काया क्लेश आदि में ही विश्वास किया।